सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ शुद्धात्मने नमः नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयर्याणम् नमो वज्रायाणम् नमो लोये सवसाहूणम् मुनिसूवयदेशयरम् पणमिय मुनिसूवयम् जिणम् देवम् सङ्कममनोगमिणम् जहासु अम्बन्नै सामो। यह श्री वीरसेन आचार्य रचित धौला टीका है जो षटखंडागम ग्रंथ पर लिखी हुई है, जिसके कर्ता है पुष्पदंत और भूतबली आचार्य, जिन्होंने श्री दर्शन आचार्य के उपदेश के अनुसार इसकी रचना की है, जो उपदेश हमें मूल में भगवान महावीर के द्वारा प्राप्त हुआ है। 16वीं पुस्तक जो शेष अनुयोग द्वार जो है, उसमें से संक्रमण अनुयोग द्वार की चर्चा करते हुए अभी हम पृष्ठ संख्या 390 पर आ गए हैं, 390। अब यहाँ हम नया पैराग्राफ पढ़ रहे हैं। यहाँ नाना जीवों की अपेक्षा जघन्य अनुभाग संक्रमकों के काल की प्ररूपणा की जाती है, यानी लगातार कोई ना कोई जीव जघन्य अनुभाग संक्रमण करता रहे तो कितने काल तक होगा उसकी बात है। यथा पांच ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण, सम्यक्त्व कॉमा लगाना, पुरुष वेद, चार संज्वलन और पांच अंतराय के जघन्य अनुभाग संक्रामकों के काल, संक्रामकों का काल जघन्य से एक समय और उत्कर्ष से संख्यात समय मात्र है, यानी लगातार करता रहे तो संख्यात जीव होगे। क्यों ऐसा कहा? क्योंकि एक शपक वाले की बात है ना। जघन्य अनुभाग संक्रमण किसके होता है? तो क्षपकों के होता है, ये जो यहाँ प्रकृति बताई उसके बारे में। सम्यक्त्व के बारे में तो क्षायिक सम्यक्त्व प्राप्त करने वाले के उसकी बात है, इसलिए लगातार कोई करेगे तो संख्यात ही जीव होंगे। अनंतानुबंधी कषायों के जघन्य अनुभाग संक्रामकों का काल जघन्य से एक समय और उत्कर्ष से आवली के असंख्यात वे भाग मात्र हैं। सम्यक मिथ्यात्व और आठ नौ कषायों के जघन्य अनुभाग संक्रामकों का काल जघन्य व उत्कर्ष से अंतर मूर्त मात्र है। हाँ, काल ज्यादा है, ये वहां अवली का असंख्यात भाग और यहाँ उत्कृष्ट काल जो है अंतर मूर्त तक। देखो आपका प्रश्न है ये जघन्य अनुभाग संक्रामक कौन है, स्वामित्व निकालो। अनंतानुबंधी की बात है ना ये बात। पेज नंबर 380 पर थ्री एट जीरो वहां अनंतानुबंधी का यहां लिया है 381 में नीचे नीचे की लाइन। हमने देखा था ना विसंयोजना करके जो जघन्य परिणाम से संयुक्त होने के प्रथम समय में वर्तमान है, तो विसंयोजना करने के बाद नया फिर बंद करेगा, हाँ, और जघन्य अनुभाग बांधेगा और बांधने के एक आवली पश्चात उसका संक्रामक होगा, संक्रामक होगा ना, यानी उसके उत्कर्षण भी लेना है वहां पर। ये 381 और 82 में ये बात बताइए अनंतानुबंधी। बंद करता है जघन्य परिणाम से और बंधावली के बाद उसका उत्कर्षण आदि करता है, उसकी बात है यहाँ पर। हाँ, वी संयोजन करने वाला जीव लिया ना वहां पर। और मिथ्या तो और आठ कषायों का कौन है, अभी हमने उसी में देखा 380 पर। अतः समुत्पत्ति सूक्ष्म केंद्रीय, और सम्यक मिथ्यात्व को ले आया है तो जो क्षायिक वाला जो है, क्षपक जो है, अनुभाग कांडक जो है, अंतिम अनुभाग कांडक, उसका जो संक्रमण होता है वहां पर लेना उसको। इसलिए वहां एक अंतर्मूर्त लिया, यानी अनुभाग कांडक घात का जो एक अंतर्मूर्त होगा, या संक्रमण का लेना, प्रकृति संक्रमण का भी लेना वहां पर। ये आठ नौकषायों वाला तो हत समुत्पत्ति था, और सम्यक मिथ्यात्व वाला वो क्षपक लेना, कौन सा, दर्शन मोहनी का। हाँ, आठ कषायों की बात, आठ कषाय मिथ्यात्व और आठ कषाय ना, वो हत समुत्पत्ति सूक्ष्म केंद्र लिया। यहां पर नहीं लिखा है, 380 पृष्ठ पर स्वामित्व में हमने पढ़ा। यानी वो उसमें एकेंद्रियों में उसने सत्ता वाला कर्मों का घात कर दिया, उसको हत समुत्पत्ति करते हैं, और बाद में वो द्विंद्रियादि कहीं पर उत्पन्न होगा तो वहां उसका जो संक्रमण होगा उसको जघन्य संक्रमण लिया था। हाँ, सम्यक मिथ्यात्व, जो सम्यक मिथ्यात्व में से सम्यक प्रकृति रूप होगा क्षपक वाला, दर्शन मुनि का क्षपक हो। हाँ, अब तीन आयु कर्मों के 390 पृष्ठ पर आते वापस। तीन आयु कर्मों के जघन्य अनुभाग संक्रामकों के, संक्रामकों का काल जघन्य से एक समय और उत्कर्ष से आवली के असंख्यातवे भाग मात्र है। आयु कर्मों का जो जघन्य का अनुभाग संक्रामक कौन है, 381 पर स्वामित्व देख लेते हैं ना थोड़ा तो याद आता है, नीचे का पैराग्राफ तो कहते, अपनी अपनी जघन्य स्थितियों को रचकर बंधावली को बिताने वाला जीव उनके जघन्य अनुभाग का संक्रामक होता है। अभी पढ़ेंगे तो पता चलेगा। तो ये अपनी अपनी जघन्य स्थितियों की बात है। अब यहां कहते हैं तीन आयु कर्मों के जघन्य अनुभाग संक्रामकों का काल कौन सा है, तो मिनिमम एक समय और उत्कर्ष से आवली का असंख्यात भाग। अब कहते तिर्यक आयु के, ख्याल में आया कौन सी आयु छोड़ी, जघन्य व अजघन्य अनुभाग संक्रामकों का काल सर्वकाल है। ये नाना जीवों की अपेक्षा बात है, इसलिए ये बात उसमें अंतर नहीं, यानी काल सर्वकाल होगा, फिर अंतर की बात आएगी, कहेंगे अंतर नहीं होता, कोई ना कोई जीव तो करने वाला है ही है। नरक गति देव गति, आयु की बात हुई, अभी गति की बात निकाल रहे। नरक गति, वो बंधने की अपेक्षा या लगातार उत्पन्न होने की अपेक्षा, ऐसा ले सकते हम। अकेला उत्पन्न होने की अपेक्षा नहीं है, बंधावली है, यानी बंध तो एक अंतर्मूर्त तक होता है आयु का, और एक आवली बीत गई, पहले छोटी कम स्थितियां बांधी थी और फिर वो उसका उत्कर्षण होगा, उसकी अपेक्षा लेना वहां पर। नरक गति देव गति और मनुष्य गति नाम कर्मों तत् प्रायोग्य अनुपूर्वी नाम कर्मो, यानी अपनी अपनी उस गति संबंधी अनुपूर्वी। वैक्रियक शरीर, वैक्रियक शरीर अंगोपांग, वैक्रियक बंधन और वैक्रियक संघात नाम कर्मों के जघन्य अनुभाग संक्रामकों का काल जघन्य से एक समय और उत्कर्ष से आवली के असंख्यातवे भाग मात्र है। उसका जघन्य संक्रामक कौन है? उद्वेलना वाला है ना, कन्फर्म कर लो। फिर 380 के आसपास होगा कहीं, 380 में आया। ऐसी में तो काल की बात है। हाँ, सर्वप्रथम संयोजन करने वाला जीव। संयोजन का अर्थ क्या है? पहले उद्वेलना कर दी, इसलिए ऐसी प्रकृति लिया है जिसका उद्वेलना होती है। तिर्यंच गति को उसमें नहीं रखा। अभी हमने कौन कौन सी देखी? देवगति, नरगति, मनुष्य गति और वैक्रेक के जो बंधन संघात शरीर अंगोपांग आदि। तो संयोजन करने वाला का अर्थ हमने कल देखा था कि पहले उसने उद्वेलना कर दी और फिर उसका जघन्य अनुभाग साथ के साथ बंध रहा। ये महत्व की बात है। जघन्य बांधा और फिर आवली बीत गई और फिर वो जो समय आएगा, तभी उसका जघन्य अनुभाग का संक्रमण होगा। ये ख्याल में आता है? देखो क्या कहते हैं, 382 पृष्ठ पर इसका स्वामित्व बताया था। ये गति नाम कर्म का, गति नाम कर्म में चिरंच गति को छोड़ना, उद्वेलना होने वाली गति नाम कर्म कौन से है? देवगति, नरक गति, मनुष्य गति। और देवगति नरक गति के साथ अभी दोनों ही गई तो वैक्रियक संबंधी भी सभी चले जाएंगे। तो इन प्रकृतियों का संयोजन करने वाला जीव लिखा था वहां 382 पृष्ठ पर। तो संयोजन का अर्थ नीचे लिखा है फुट नोट में। कि पहले उसने क्या किया कि उसका संयोजन किया ने, उसकी उद्वेलना कर दी। जो उद्वेलना प्रकृतियां हैं, उद्वेलन प्रकृतियां, उसका जघन्य अनुभाग बंध किया और बंध के बाद आवली बिताने पर उसका जघन्य अनुभाग का संक्रमण हुआ, उसको वहां लिया था। अभी हम आते हैं वापस 390 पर। जगन्यक्ष में उत्कर्ष से आवली के असंख्यात विभाग, ये नाना जीवों की अपेक्षा है। इसलिए लगातार कोई करते रहे कोई ना कोई जीव तो आवली का असंख्यात भाग तक होगा। इसी प्रकार उच्च गोत्र के संबंध में कहना चाहिए, क्योंकि वो भी उद्वेलना वाली प्रकृति है। आहार शरीर, आहार शरीर अंगोपांग, आहार बंधन, आहार संघात और तीर्थंकर जघन्य अनुभाग संक्रामकों का काल जघन्य से एक समय और उत्कर्ष से संख्यात समय मात्र है। क्योंकि इनके बांधने वाले जीव ही संख्यात होंगे ना, इसलिए वो जघन्य अनुभाग संक्रामकों को संख्यात समय लिए लगातार। शेष अनुद्वेल्यमान नाम प्रकृतियों और नीच गोत्र के जघन्य अनुभाग संक्रामकों का काल सर्वकाल है। यानी कोई ना कोई जीव वो जघन्य अनुभाग संक्रमण करता ही रहेगा। इस प्रकार काल प्ररूपणा समाप्त हुई, नाना जीवों की अपेक्षा काल घटित किया। आयु के स्थिति संक्रमण में हाँ, उत्कर्षण भी बंध के काल में होगा। जो बंध का अंतर्मूर्त है, आयु का बंध शुरू किया, आवली बीत गई और उतने अभी एक अंतर्मूर्त तक आयु का बंध हो रहा है, उतने काल में उत्कर्षण पॉसिबल है। हाँ, यानी वो नीचे के स्थिति में से ऊपर के स्थिति में चले जाएंगे। भले आयु की स्थिति तो उतनी बंधी है, यानी कितने मान लेते कि पूर्व कोटि की बांधी है, वो तो बढ़ेगी नहीं। स्थिति की मैं बात कर रही हूँ, स्थिति 10,000 बंधी है, उसकी जरूरत नहीं है। 10,000 की स्थिति वाले जो बांधे ना, तो निषेक रचना अभी पहले समय से लेकर 10,000 वर्ष तक के निषेक रचना हुई है। तो जो पहले समय वाला जो निषेक है उसमें से परमाणु ऊपर चले जाएंगे। इसीलिए आवली बीत जाने पर जो उर्वरित अंतर्मूर्त है उसमें उसका उत्कर्षण होगा। नहीं, स्थिति की रचना, अनंत परमाणु जो लिए जाते हैं उसमें हर परमाणु में 10,000 स्थिति नहीं है। दस हजार की स्थिति बांधी तो निषेक रचना कैसे हुई? एक समय से लेकर 10,000 तक। तो जो पहला निषेक है एक समय वाला, उसके परमाणु 10,000 वर्ष तक ऊपर चले जा सकते। हाँ, सेकंड टाइम भी अगर बंधे तो उतनी भी बन सकती है। हाँ, उत्कर्षण तो हमने यहाँ पर संक्रमण के इसमें ही पढ़ा है। उत्कर्षण का अर्थ आयु अधिक बंधनी चाहिए ऐसा नहीं है। नीचे के निषेकों में से बन सकती है क्या नहीं बन सकती है, ऐसा आपका प्रश्न है। हाँ, वो बन बढ़ सकती है, वो बढ़ते तो ऊपर से घटकर घातायुष्क वाले है, घातायुष्क वाले है। हाँ, बढ़ सकती है स्थिति, बढ़ सकती है। जब क्षणिक की दोबारा जब घट गई आयु, तो फिर दोबारा बांधने के काल में घट गई क्या, ऐसे घट गई? तो सम्यक्त के बाद उसने फिर नरकायु बांध दिया, ऐसा कहना है आपको? आपने जो कहा ना सेकंड टाइम में उसने घटाया, बंद के काल में घटाया जो है, तो सेकंड टाइम जो अगर बांधा है तो अभी सम्यक्त होने के बाद क्या नरकायु बांधी फिर दोबारा? तो बंद के काल में दोबारा घटी ये कैसे कह सकते हैं? उसके लिए फिर बंद की अपेक्षा नहीं है ऐसे मुझे लगता है। बिना बंद की अपेक्षा, हाँ आपका प्रश्न अलग है, और उसके उसका जो स्टेटमेंट है कि फिर दोबारा बंधने के काल में घट गई, तो वो तो फिर सम्यक्ति होने के बाद उसको नरकायु का बंध होने का सवाल आ जाएगा, फिर तो बांधेगा ही नहीं वो आयु उसको, फिर बंधने का उसका बंधने का अवसर नहीं आएगा। चलो अभी आगे बढ़ेंगे हम। नहीं, कदली घात में वो कांडक वाला होगा। हाँ, कटौती होती है तो आबाधा काल में जो कुछ वो चलता है ना नीचे ऊपर जो, हाँ उस टाइम होगी कटौती। एक बार उदय चालू हो जाएगा तो उसमें कुछ नहीं होगा। हाँ, ये घातायुष्क भी जो कहते हैं ना, तो बंधने के बाद वो जो उर्वरित काल है उसमें वो घातायुष्क हो सकते हैं परिणामों के बल से। उसमें भी सम्यक दृष्टि का कितना घात होता है, मिथ्या दृष्टि का कितना घात होता है, हमने देखा था वो। हाँ, अब नाना जीवों की अपेक्षा अंतर की प्ररूपणा की जाती है। यथा पांच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, असाता वेदनीय, मिथ्यात्व, 16 कषाय, 9 कषाय और 4 आयु कर्मों के, तथा यश कीर्ति को छोड़कर सब नाम प्रकृतियों, निज गोत्र और 5 अंतराय के उत्कृष्ट अनुभाग संक्रामकों का, पहले उत्कृष्ट को लिया, अभी तक हम जघन्य को पढ़ रहे थे ना काल में, तो उत्कृष्ट अनुभाग संक्रामकों का अंतरकाल जघन्य से एक समय और उत्कर्ष से असंख्यात लोक मात्र है। उत्कृष्ट को देख लेते हैं फिर। वो तो कोई भी जीव लिया ना, जो उत्कृष्ट अनुभाग बांधने वाला जीव लिया था, एक इंद्रियों में तो जघन्य किया था। तीन सौ सतहत्तर पृष्ठ में तीन सौ बयासी में कहाँ चले गए आप? काल की बात नहीं चल रही यहाँ पर। उत्कृष्ट अनुभाग संक्रामक का स्वामी कौन है? स्वामी को पता चले तो फिर हम उसका अंतर घटा सकते हैं कि नहीं? तो 377 पर है कि जो नियम से मिथ्या दृष्टि है, हाँ, और मति ज्ञानावरण का उत्कृष्ट अनुभाग संक्रम अनुभाग बांधा है और फिर कहीं अन्यत्र उत्पन्न हुआ है, वहां भी हमने असंख्यात वर्षायुष कहने भोग भूमि वालों को और देवों को छोड़ा था। उनको छोड़कर भले एक इंद्रिय में जाए, द्विंद्रिय में जाए, पर्याप्त में जाए, अपर्याप्त में जाए, उत्कृष्ट अनुभाग बांध कर गया है तो वहां उसका उत्कृष्ट अनुभाग संक्रमण होता है। उसके बाद ये लिस्ट बताई थी, उनका भी ऐसा ही कथन करना चाहिए। वे ही लिस्ट अभी उसी लिस्ट को यहाँ लिया है। इनको छोड़ा नहीं, अकेले यशकृत को छोड़कर अन्य सब नाम प्रकृतियों को लिया है। हाँ, नाम प्रकृतियों के लिए वो कल जैसा वो लिस्ट थी ना, वैसा यहाँ नहीं लेनी है। निज गोत्र पांच अंदर सबका जो उत्कृष्ट अनुभाग संक्रामक, तो कहते हैं इसने उत्कृष्ट अनुभाग बांधा है और बाद में अन्यत्र उत्पन्न हुआ है तो उसका उत्कृष्ट अनुभाग संक्रमण चलेगा। तो ये तो काल की अपेक्षा बात, अंतर कितना पड़ेगा? तो असंख्यात लोक मात्र, क्योंकि फिर उत्कृष्ट अनुभाग कौन सा बांधेगा, कब बांधेगा? तो उत्कृष्ट अनुभाग उत्कृष्ट स्थिति तो संगी पंचेंद्रिय बांधेगा। यानी अनुभाग उसने घटाया, अभी सूक्ष्म में चला गया, कहीं पर चला गया, बादर में चला गया, तो उसका तो अनुभाग घट गया। हाँ, असंख्यात लोक मात्र है। हाँ, नाना जीवन की अपेक्षा इतना लंबा काल है। साता वेदनीय कौमा सम्यक्त्व, सम्यक मिथ्यात्व, यशकीर्ति, ऊपर यशकीर्ति को छोड़ा था ना, अब यहाँ यशकीर्ति को लिया और उच्च गोत्र के मिला। 391 पृष्ठ पर आते हैं वापस। उत्कृष्ट अनुभाग संक्रामकों का अंतर नहीं होता, उत्कृष्ट अनुभाग संक्रामक। हाँ, जघन्य की बात मत सोचो, उत्कृष्ट की बात सोचो। देखो, हाँ देखो, उसका ये लेना क्या 378 पृष्ठ पर। अब साता वेदनीय का अंतर नहीं होता कहाँ है? तो साता हाँ तेरहवे में साता वेदनीय का उत्कृष्ट अनुभाग कहाँ बांधा? दसवें के अंत में, और उसका बारहवें में और तेरहवें में उसका उत्कृष्ट अनुभाग संक्रमण है, तो वो तो हमेशा ही तेरहवा गुणस्थान रहेगा और वहाँ जीव भी हमेशा रहेंगे। अब कहते हैं सम्यक्त्व का उत्कृष्ट अनुभाग संक्रमण कहाँ होगा? सपना में तो उसका जघन्य हो जाएगा। हाँ, उद्वेल नाम में सम्यक्त्व का कहाँ पर लिया? स्वामित्व में सम्यक्त्व को कहाँ लिखा है? सम्यक्व की बात नहीं उठाई ना वहां पर, एक जीव की अपेक्षा काल में है क्या उसको? एक जीव की अपेक्षा जो काल है ना, उसमें उत्कृष्ट की बात है क्या कहीं सम्यक्त्व संबंधी? वो 383 पृष्ठ पर अनादि अनंत अनादि स्वपर्यव सिद्धि है, अनुत्कृष्ट की बात है, उत्कृष्ट की ये उद्वेल्यमान जो प्रकृतियों है ना, उसका जो काल वहां बताया था, काल की अपेक्षा स्वामित्व निकालने की कोशिश कर रही मैं। ये उत्कृष्ट अनुभव के साथ था और फिर उद्वेलना में फिर उसका उत्कृष्ट अनुभव संक्रमण होगा। 382 में स्वामित्व कहाँ है? सम्यक तो उत्कृष्ट संग्रह काल जगने से उत्कर्ष से साधिक 266 सागरोपम, वो एक जीव की अपेक्षा काल है ना वो। यानी उत्कृष्ट अनुभव के साथ वो वेदक हुआ है इसलिए वो 266 सागरोपम लिया उसका। हाँ तो इसलिए कोई ना कोई जीव रहे, सम्यक्त्व और सम्यक मिथ्यात्व का जो है ये तो वेदक सम्यक्त्व के काल में। यश कीर्ति उच्च गोत्र में भी समझ लेना वैसा। इस प्रकार वो हो गए उत्कृष्ट अनुभाग संक्रामकों का अंतर का मुझे वे 391 पृष्ठ पर आना। ये अपना अंतर की प्ररूपणा चल रही है, यहाँ नीचे का जो पैराग्राफ है नाना जीवों की अपेक्षा से बात चल रही है, उसमें जघन्य अनुभाग संक्रामक, जघन्य अनुभाग संक्रामक यानी जहाँ मिनिमम पॉसिबल उसके स्पर्धक है, जघन्य अनुभाग बंधा हुआ है उसका, या उत्कर्षण होता है कहीं अपकर्षण होता है कहीं पर प्रकृति रूप होता है, उसको जघन्य अनुभाग संक्रमण कहा है। नाना जीवों की अपेक्षा यहाँ बात चलेगी, नाना जीवों की अपेक्षा लगातार काल कितना होता है उसको हमने देखा, अब अंतर पड़ता है कि नहीं पड़ता और पड़ता है तो कितना पड़ता है। तो कहते हैं 5 ज्ञानावरण 6 दर्शनावरण, सम्यक्त्व सम्यक मिथ्यात्व संज्वलन लोभ स्त्रीवेद 6 नौकषाय और 5 अंतराय के जघन्य अनुभाग संक्रामकों का अंतर काल जघन्य से एक समय और उत्कर्ष से 6 मास मात्र है। क्या कहना चाहते हैं? ये 6 मास कैसे घटित होगा अश्विन भाई? हाँ 13वें गुणस्थान में ये वेद भी कहाँ है सारे? शपक श्रेणी लेना वहां पर। हाँ अभी ज्ञानावरण जो वगैरह है ना उसका जगन्य अनुभाग संक्रामक कौन है? वो तो आवली प्लस एक समय बाकी है तभी जो, हाँ जब उदीर्ण होती तभी जघन्य अनुभाग संक्रामक भी है 12वें के अंत की ओर। सम्यक्त्व और सम्यक मिथ्यात्व का जघन्य अनुभाग संक्रामक क्षय करने वाले के, सम्यक मिथ्यात्व में सम्यक मिथ्यात्व का क्षय का अंतिम समय लेना, और सम्यक्त्व के बारे में अभी उसका जो अंतर आवली प्लस एक समय बाकी होता है तभी उसको लेना, संज्वन लोभ का 10वें में लेना, स्त्री वेद का उसके जब 9वें में लेना, क्योंकि उसका भी भले उसका संक्रमण तो होगा ना, स्त्री वेद की उदय के साथ भले नहीं चढ़ा तो भी। हाँ मुझे लगा आपको ऐसा प्रश्न आने वाला है, क्योंकि पुरुष वेद के साथ चढ़ने वाले में एक वर्ष का अंतर और उसमें पृथक वर्ष का अंतर पड़ता है, वो बात नहीं, भले पुरुष वेद के साथ भी चढ़े परंतु सप्ताह में जो स्त्रीवेद के प्रकृतियां जो पड़ी है उनका भी संक्रमण वगैरह जो होता है, अनुभाग का भी घटना होता है, उसकी बात यहाँ उठनानी। छह नौ कषाय यानी एक शपक की अपेक्षा ली बात, इतनी बात यह समझ लेना है। क्योंकि छह नौ कषाय का उदय भले आठवें में मिटता है, क्षय कहाँ होता है? नौवें में होता है ना, क्योंकि वो पुरुष वेद रूप टर्न हो जाती है ना सभी अंदर पड़े पड़े। तीन संज्वलन और पुरुष वेद का भी अंतरकाल इसी प्रकार ही है। विशेष इतना है कि उनका उक्त अंतरकाल उत्कर्ष से साधिक एक वर्ष मात्र है। ये कैसे घटित होगा? देखो कोई जो स्त्री वेद के उदय के सहित चल रहा है ना, या पुरुष वेद के उदय के सहित भी चल रहा है, तो पुरुष वेद का जो जघन्य में जघन्य संक्रमण किसके होगा? पुरुष वेद के सहित चढ़ने वाले के होगा, तो उसमें एक वर्ष का अंतर पड़ सकता है। पुरुष वेद के उदय सहित चढ़ने वाले जीवों में, नाना जीवों में एक वर्ष का अंतर पड़ सकता है। क्षपक वालों में तो छह महीने का ही अंतर है, परंतु अन्य वेद के सहित भी चढ़ेगा कोई ना कोई जीव, परंतु एकमात्र पुरुष वेद के सहित चढ़ने वाले जीवों की अपेक्षा एक वर्ष का अंतर घटित होता है। तो पुरुष वेद का जघन्य संक्रामक कौन होगा? पुरुष वेद के साथ चढ़ा है और नवक, हाँ वो तो उसके जो लास्ट में उसके जो बनते हैं, और जब क्रोध के उदय काल में वो लास्ट में बंधने वाले के जो संक्रमण होता है अंतिम समय प्रबद्ध का, उसकी बात है। स्त्री वेद वगैरह के साथ बंधने वाले जो है उसका बंध जल्दी रुक जाता है, तो उसमें वो जघन्य अनुभाग इतना नहीं होगा जो पुरुष वेद वाले के होगा। इसी प्रकार अब तीन संज्वलन में कैसा घटित किया? हाँ, क्रोध के साथ चढ़ने वाला या मान के साथ या माया के साथ, उसमें अंतर घटित हो सकता है, परंतु सभी टर्न होकर लास्ट में तो लोभ रूप हो ही जाते हैं, इसलिए उसमें तो छह महीने का ही अंतर घटित किया। 391 पेज नीचे से चौथी पांचवी लाइन। इसी प्रकार नपुसक वेद के संबंध में कहना चाहिए, विशेष इतना है कि उत्कृष्ट अंतरकाल संख्यात वर्ष मात्र है, जिसको हम पृथक्त्व वर्ष भी कहते हैं। ये संख्यात वर्ष नपुसक वेद के साथ चढ़ने वाले अनंतानुबंधी कषायों का वह अंतरकाल जघन्य से एक समय, जघन्य अनुभाग संक्रामकों की बात है, जघन्य से एक समय और उत्कर्ष से असंख्यात लोक मात्र है। जघन्य जघन्य की बात है, जघन्य संक्रामक की अपेक्षा है ना। निकालना वो स्वामित्व, नपुसक वेद के सहित चढ़ने वाले का ही जघन्य संक्रामक होगा वो। 83 या 84 कहीं होगा। जगन्य अनुभव संक्रामक के प्ररूपण 381। हाँ देखो नपुसक वेद का मिला 381 पेज पर ऊपर से छठी लाइन। नपुसक वेद का क्षपक, जो जीव नपुसक वेद के उदय के साथ ही क्षपक श्रेणी पर आरूढ़ होकर नपुसक वेद की अंतिम फाली का क्षेपण कर रहा हो, वह उसके जघन्य अनुभाग का संक्रामक होता है। पर स्त्री वेद के लिए ऐसी कंडीशन नहीं है, वो किसी भी वेद के उदय के साथ चढ़ा हो वो स्त्री वेद के अंतिम अनुभाग कांडम की कांडक के अंतिम फाली का क्षेपण करता है, उसकी बात है वहां। इसलिए स्त्री वेद के लिए वो तो छह मास वाला अंतर लिया, पुरुष वेद के लिए एक और नपुसक के लिए मैक्सिमम अंतर पृथक्त्व वर्ष यानी संख्यात वर्ष लिया। अभी 391 पृष्ठ पर अनंतानुबंधी का पढ़ा हमने, नीचे से तीसरी लाइन, तीन आयु कर्मों का वह अंतरकाल, जघन्य से एक समय और उत्कर्ष से असंख्यात लोक मात्र है। ये जघन्य आयु के संक्रामक का काल हमने देखा था, हाँ, अनंतानुबंधी का विसंयोजन करके जघन्य परिणाम से संयुक्त होता है, जघन्य अनुभाग बांधता है, फिर उसके जब बंधावली के बाद उसका संक्रमण होगा, उसको लिया था। असंख्यात लो नाना जीवन की अपेक्षा चल रही है ना बात, यानी विसंयोजन करने वाले जीव हो गए तो भी वो जघन्य परिणाम के साथ जघन्य अनुभाग बांधने वाले चाहिए इसके लिए। अब तीन आयु कर्म की बात, जघन्य से एक समय, उत्कर्ष से असंख्यात लोग, आयु में हमने कौन से देखे थे, जघन्य का संक्रामक, अपनी अपनी वो जघन्य स्थिति को बांधने वाला, और फिर एक बंधावली बीत जाने पर, अभी बंधकाल चल रहा है तो उसमें वो जघन्य अनुभाग का संक्रामक होता है, जो नाम प्रकृतियां 391, जो नाम प्रकृतियां सादी सत्कर्म वाली है, यानी सत्ता में जो कर्म है उसके जो आदि है, उन नाम प्रकृतियों के जघन्य अनुभाग संक्रामकों का अंतरकाल जघन्य से एक समय और उत्कर्ष से असंख्यात लोक मात्र है। शादी वाले चाहिए ना, नहीं फिर नया बंध करेगा उसकी अपेक्षा है, जैसे उद्वेलना कर दी और बाद में बांधा तो उसको शादी हो गई ना, सत्ता में नहीं थी और फिर आदि हो गई उसकी, इस तरह लेना उसको। इसी प्रकार उच्च गोत्र की भी प्ररूपना करना चाहिए, क्योंकि वो भी वो उद्वेलना होने के बाद उसको शादी हो जाएगी। शेष नाम प्रकृतियों नीच गोत्र, तिर्यक आयु, मिथ्यात्व, आठ कषाय, साता वेदनीय, असाता वेदनीय, निद्रा निद्रा, प्रचला प्रचला और स्त्यान वृद्धि के जघन्य अनुभाग संक्रामकों का अंतरकाल नहीं है, यानी सदाकाल ही कोई ना कोई उसके जघन्य संक्रामक हो गए, जघन्य अनुभाग संक्रामक। वो कौन से जीव लिए थे हमने, याद है? मिथ्यात्व आठ कषायों में तो हमने वो हत समुत्पत्तिक वाला लिया था, सूक्ष्म केंद्रियों में जाने के बाद। अन्य भी अनेक कर्मों के बारे में वैसा ही, हाँ, निद्रा निद्रा वगैरह उसको भी लिया था कि हत समुत्पत्ति किया, नया बंध और जघन्य बांधा और फिर अन्य कहीं भी उत्पन्न हुआ, यानी आवली के बाद कहीं पर भी हो वो, तो फिर उसका जघन्य अनुभाग संक्रामक होता है। यानी मिनिमम पॉसिबल बंध कब होगा, तो वो सूक्ष्म एकेंद्रियों में, पहले उसने घात किया है, सत्ता में कर्म है उसका, अनुभाग भी घटाया, स्थिति भी घटाए और फिर बंध भी और जघन्य अनुभाग का बांधा और फिर बाद में उसमें उत्कर्षण हो गया, तो ऐसा अंतर नाना जीवों की अपेक्षा नहीं पड़ेगा, क्योंकि इतने सारे जीव सूक्ष्म में हैं, कोई ना कोई जीव उसमें हमेशा ही रहेगा। अब सन्निकर्ष की प्ररूपना की जाती है। सन्निकर्ष का अर्थ याद है कि नहीं है? एक प्रकृति के साथ अन्य किस किस का संक्रामक है, या उत्कृष्ट एक का है, मति ज्ञानावरण के उत्कृष्ट के साथ अन्य किस किस प्रकृति का वो है संक्रामक, उसकी बात है। यथा मति ज्ञानावरण के उत्कृष्ट अनुभाग का संक्रामक श्रुत ज्ञानावरण के उत्कृष्ट अनुभाग का संक्रामक होता है, वह षट स्थान पतित होता है। इस प्रकार जानकर, हाँ हाँ दोनों का भी उत्कृष्ट एट ए टाइम होगा। और षट्स्थान पतित है, उसमें कितनी वृद्धि है कितनी हानि है उसके, षट्स्थान पतित होते हैं, इस प्रकार जानकर आगे भी ले जाना चाहिए। यह उत्कृष्ट अनुभाग की बात चल रही। अब जगन्य अनुभाग संक्रामक के सन्निकर्ष की प्ररूपणा इस प्रकार है। जो मति ज्ञानावरण के जगन्य अनुभाग का संक्रामक है, वह नियम से शेष चार ज्ञानावरण प्रकृतियों के जगन्य अनुभाग का संक्रामक होता है। वह चार प्रकार के दर्शनावरण के नियम से जगन्य अनुभाग का संक्रामक होता है। निद्रा और प्रचला का नियम से असंक्रामक होता है। ऐसा क्यों कहा? इसका स्वामित्व याद करेंगे। मति ज्ञानावरण का जगन्य अनुभाग का संक्रामक कौन है? बारहवें का अवली प्लस एक समय बाकी है वह जी। उसी पोजीशन पर चार दर्शनावरण का भी होता है, और निद्रा और प्रचला का दो अवली पहले हो जाता है, दो अवली प्लस एक समय। यानी जिस समय वो ज्ञानावरण का जगन्य अनुभाग संक्रामक है, उस समय निद्रा प्रचला का नहीं है, संक्रामक ही नहीं है, जगन्य उत्कृष्ट की बात ही नहीं है, क्योंकि उसका अनुभाग संक्रमण रुक गया अभी। वह पांच अंतराय प्रकृतियों के नियम से जगन्य अनुभाग का संक्रामक होता है, ये बात, क्योंकि अंतराय का भी उसी पोजीशन पर है, बारहवें के अंत में क्षपक वाले के आवली प्लस एक समय है वो उस समय। शेष प्रकृतियों में जिनका सत्व है, उनके नियम से अजगन्य अनुभाग का संक्रामक है, क्योंकि जिसकी सत्ता है अभी अघातियों की है, उसका जगन्य तो नहीं कहलाएगा, अजगन्य होगा उसका, क्योंकि उसका जगन्य उसके अपने अपने पोजीशन पर होगा जहां होना है। इस प्रकार सन्निकर्ष की प्ररूपना समाप्त हुई। यहां स्वस्थान और परस्थान के भेद से अल्प बहुत्व दो प्रकार का है। चौसठ पद वाला जो अल्प बहुत्व दंडक है, वह यहां प्रकृत है, वह दो प्रकार का है, यानी उत्कृष्ट अनुभाग और जघन्य अनुभाग की अपेक्षा। ये अनुभाग के 64 पद बताए थे, उसको दंडक कहते हैं। कौन से प्रकृतियों में कितना अनुभाग होता है, उसकी अपेक्षा वहां अल्प बहुत्व के 64 नंबर हमने क्रमांक देखे थे। ये 15वीं के स्टार्टिंग में देखे थे शायद, क्या 14वीं में देखे थे, 14वीं पुस्तक में। ये 64 हमने क्रम से वो अनुभाग की अपेक्षा देखे थे। हाँ, वह दो प्रकार का है, उत्कृष्ट पद विषयक और जगन्य पद विषयक। उत्कृष्ट पद की अपेक्षा जैसे अनुभाग बंद के विषय में, हाँ ये बंद के विषय में हमने देखा था, उक्त अल्प बहुत्व दंडक का कथन किया गया है, वैसे ही उत्कृष्ट अनुभाग संक्रम के विषय में भी उसका कथन करना चाहिए। विशेष इतना है कि सम्यक मिथ्यात्व की अपेक्षा सम्यक्त्व में अनंत गुणहीन इस प्रकार निष्ठापक पतितों को करना चाहिए। पतित है, हम षट्स्थान पतित कहते हैं ना, तो वैसे यहां पर लेना है कि निष्ठापन जिसने किया है, उसका अर्थ आते आगे बताते क्या कहते हैं। सम्यक मिथ्यात्व की अपेक्षा सम्यक्त्व में, हमने देखा था सम्यक मिथ्यात्व कैसे तैयार होते प्रकृति। हाँ, मिथ्यात्व की प्रकृतियां स्टन हो जाती है, संक्रमित होती है, वो क्या सम्यक मिथ्यात्व बनती है, तो अनंत गुणाहीन होती है, और सम्यक मिथ्यात्व में से सम्यक्त्व रूप होती है तो भी अनंत गुणाहीन हो जाती है, यानी उसके अनंत विभाग उसका अनुभाग रह जाते हैं। तो यहाँ कहते हैं सम्यक मिथ्यात्व की अपेक्षा सम्यक्त्व में अनंत गुणहीन इस प्रकार निष्ठापक पतितों को करना चाहिए, अर्थात इसी का अर्थ बताते हैं, निष्ठापक पतितों को करना चाहिए ने। सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक्त्व इन दो अबंध प्रकृतियों के, वहां बंद के बाद में जैसा अनुभाग बंद की बात है वैसा समझना, ऐसे कहा था। अब ये दो प्रकृतियां तो अबंध है, तो इनके बारे में यहाँ भी अल्प बहुत्व को अनंत गुणहीन क्रम से कहना चाहिए, यानी उत्कृष्ट अनुभाग की अपेक्षा पहला नंबर आएगा ये सम्यक मिथ्यात्व का, और सम्यक तो उससे अनंत गुणाहीन है ऐसा कहेंगे। यह उत्कृष्ट बंध की अपेक्षा उत्कृष्ट संक्रम में भेद है। ये दो प्रकृतियां बंधने वाली नहीं है, इसलिए उनका अलग से दो को उल्लेख किया है। बाकी जो अन्य प्रकृतियां हैं, वो जो अनुभाग बंध में जो 64 पद वाली प्ररूपना की थी वैसे वहां समझना। जघन्य पद की अपेक्षा यानी जघन्य अनुभाग की अपेक्षा संज्वलन लोभ सर्वमंद अनुभाग वाला है। हमने देखा था ना वो संज्वलन लोभ कितनी वो कृष्टि होती है, पहले पूर्व स्पर्धक में से अपूर्व स्पर्धक बनते हैं, अपूर्व स्पर्धकों में से कृष्टि होती है, बादर कृष्टि में से सूक्ष्म कृष्टि होती है, उसमें भी वो क्षपकों के भी वो तो संग्रह कृष्टियां होती है, फिर वो क्रोध है मान रूप मान है माया रूप उसमें भी और हीन होते होते चला जाता है, और जो अंतिम समय में जो है वो संज्वलन लोभ का अनुभाग अत्यंत मंद है, इसलिए सर्व मंद अनुभाग वाला का। उससे कहते संज्वलन माया अनंत गुणी है, जगन्य की अपेक्षा बता रहे, क्योंकि माया का बंधक काल और उसका जगन्य अनुभाग होने का काल उदय काल चल रहा है, तो उसका अनुभाग भी वहां घटता चला जाता है। जब तक माया का अंतिम निषेक लोभ रूप हो जाएगा वहां उसका अनुभाग अत्यंत मंद है, तो उसका नंबर माया का आएगा। फिर संज्वलन मान अनंत गुणा है, संज्वलन क्रोध अनंत गुणा है, पुरुष वेद में वह अनंत गुणा है, सम्यक्त्व में अनंत गुणा है, सम्यक मिथ्यात्व में अनंत गुणा है। अब जघन्य की ओर से हम अल्प से बहुत की ओर बढ़ रहे हैं, इसलिए यहां बताएं। साथ हो गए हैं मनपर्य ज्ञानावरण और दानांतराय में अनंत गुणा है। एक क्षपक में इनको एक एक साथ ये कौन कौन सी जाती है प्रकृतियां, यह उसका अनुभाग कहां किसका हीन होता है उसकी बात की है। फिर अवधि ज्ञानावरण और लाभांतराय में अनंत गुणा है। श्रुत ज्ञानावरण अचक्षु दर्शनावरण और भोगांतराय में अनंत गुणा है। चक्षु दर्शनावरण में अनंत गुणा है। मति ज्ञानावरण और परिभोगांतराय में अनंत गुणा है। 12 हो गए। 13वें में केवल ज्ञानावरण केवल दर्शनावरण और वीर्यांतराय में अनंत गुणा है। पहले तो वो मति ज्ञानावरण वो तो देशघाती थे वहां तक, तो अब ये तो सर्वघाती हो गए, उसका अनुभाग अनंत गुणा है। उसके साथ वीर्यांतराय को रखा। प्रचला में अनंत गुणा है, निद्रा में अनंत गुणा है, हास्य में अनंत गुणा है, रति में अनंत गुणा है। हाँ, फिर भी उसका अनुभाग अनुभाग में जो कम अधिक है जघन्य पद की अपेक्षा, उसका जघन्य में जघन्य अनुभाग कितना है उसकी अपेक्षा लेना। 18वें में जुगुप्सा में अनंत गुणा है, भय में अनंत गुणा है, शोक में अनंत गुणा है, अरति में अनंत गुणा है, स्त्री वेद में अनंत गुणा है। 22 हो गए। नपुसक वेद में अनंत गुणा है, अनंतानुबंधी मान में अनंत गुणा है, अनंतानुबंधी क्रोध में विशेष अधिक है, अनंतानुबंधी माया में विशेष अधिक है, और अनंतानुबंधी लोभ में विशेष अधिक है। अनंतानुबंधी की बात चल रही है, पहले मिनिमम वाला कौन सा लिया, मान, फिर क्रोध, फिर माया और लोभ, अधिक की ओर बता रहे हैं। वैक्रियक शरीर में अनंत गुना है, 28। तिर्यंच आयु में अनंत गुना है, मनुष्य आयु में अनंत गुना है, नरक गति में अनंत गुना है, मनुष्य गति में अनंत गुना है। ये तो पहले दंडक बताए थे ना उन्होंने, इसमें तो अपने बुद्धि कुछ नहीं चलेगी। हाँ, देव गति में अनंत गुना है, उच्च गोत्र में अनंत गुना है, नारकायु में अनंत गुना है, देवायु में अनंत गुना है, औदारिक शरीर में अनंत गुना है, 37। तेजस शरीर में अनंत गुना है, फिर कार्मण शरीर में, हाँ तेजस शरीर 38 है, कार्मण शरीर 39, कार्मण शरीर में अनंत गुना है, तिर्यक गति में अनंत गुना है, नीच गोत्र में अनंत गुना है, 41। अयश कीर्ति में अनंत गुना है, प्रचला प्रचला में अनंत गुना है, निद्रा निद्रा में अनंत गुना है, स्त्यान वृद्धि में अनंत गुना है, अप्रत्याख्यानावरण मान में अनंत गुना है, पहले यहाँ भी मान को लिया, अप्रत्याख्यानावरण क्रोध में विशेष अधिक है। ये नॉर्मली तो यही पोजीशन है ना, कहाँ मान में जो उसका अनुभाग कम है, माया क्रोध में ज्यादा है, माया में ज्यादा है, लोभ में ज्यादा है, और हमने देखा तो जब वो आठवें गुणस्थान में नवे में जाता है तो उसका तो उलट पुलट हो जाता है, अश्वकरण हो जाता है, याद है, फिर क्रोध में ज्यादा, फिर मान में, फिर माया में, फिर लोभ में। सैतालीस अप्रत्याख्यान क्रोध, फिर अप्रत्याख्यानावरण माया में विशेष अधिक है, 48, 48। अप्रत्याख्यानावरण लोभ में विशेष अधिक है, प्रत्याख्यानावरण मान में विशेष अधिक है, प्रत्याख्यानावरण क्रोध में विशेष अधिक है, 52 नंबर पर प्रत्याख्यानावरण माया में विशेष अधिक है, प्रत्याख्यानावरण लोभ में विशेष अधिक है, असाता वेदनीय में अनंत गुणा है, यश कीर्ति में अनंत गुणा है, साता वेदनीय में अनंत गुणा है, 56 हुए, 57 में मिथ्यात्व में अनंत गुणा है, 58 में आहार शरीर में अनंत गुणा है। इस प्रकार ओघ अल्पभूतव समाप्त हुआ। यहाँ तो 58 लिए और जहाँ जहाँ डबल लिए ना हमने, देखो आठवें में दो लिए थे, वहाँ एक हुआ, नौवे में दो हुआ, उसमें एक, दसवें में तीन लिए एक साथ, वहाँ के दो, चार हुए, फिर बारहवें में दो लिए थे उसमें से एक लेना, तेरहवें में फिर तीन लिए थे उसमें दो लेना, सात ये हो गए, और अभी हमने कितने देखे थे, 8 और 7 15, 65 हो जाएगी फिर। मैंने 1 2 3 4 5 6 7 65 हो जाएगी ना यहाँ पर। ठीक है। अब ये तो ओव मैंने सामान्य से बता दिया, इन जनरल बात के। अब मार्गणा मैंने नरक गति में बताएंगे, नरक गति में फिर अल्पभूतव बताएंगे, जघन्य अनुभाग संक्रमण का दंडक। अब यहाँ नरक गति में सबसे मंद अनुभाग वाली कौन सी, उसको देखेंगे अभी हम। जनरल में किसको लिया था पहला नंबर, संज्वलन लोभ को लिया था। नरक गति में तो वो तो संज्वलन लोभ की बात होगी नहीं, क्योंकि जघन्य अनुभाग की बात, संज्वलन लोभ का जघन्य जो अनुभाग है वो दसवें में होगा, तो वो तो यहाँ पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ नरक गति में कौन सी पॉसिबल है उसकी बात करते हैं। तो सबसे मंद अनुभाग वाली सम्यक तो प्रकृति है, उससे सम्यक मिथ्यात्व में वह अनंत गुणा है, अनंतानुबंधी मान में अनंत गुणा है, अनंतानुबंधी क्रोध में विशेष अधिक है, अनंतानुबंधी माया में विशेष अधिक है, अनंतानुबंधी लोभ में विशेष अधिक है, तिर्यक आयु में अनंत गुणा है, मनुष्यायु में अनंत गुणा है, नारकायु में अनंत गुणा है, औदारिक शरीर में अनंत गुणा है। दसवां हो गया। अभी ग्यारहवें में वैक्रियक शरीर में अनंत गुणा है, तेजस शरीर में अनंत गुणा है, कार्मण शरीर में अनंत गुणा है, हास्य में अनंत गुणा है, रति में अनंत गुणा। ये पंद्रहवा हुआ। नरक गति में अनंत गुणा, तिर्यंच गति में अनंत गुणा, तिर्यच हुआ, तिर्यंच गति में सत्रहवा हुआ। अभी फिर मनुष्य गति में अनंत गुणा, देव गति में अनंत गुणा है, नीच गोत्र में अनंत गुणा है, बीस हुए। अयश कीर्ति में अनंत गुणा, प्रचला में अनंत गुणा, निद्रा में अनंत गुणा, प्रचला प्रचला में अनंत गुणा है, निद्रा निद्रा में अनंत गुणा है। ये जघन्य की बात चल रही हो। जुगुप्सा में अनंत गुणा है। और यहाँ कितने प्रकृतियों उदय रूप नहीं है परंतु सत्ता में है, उसका जघन्य अनुभाग कितना हो सकता है, उसकी बात चल रही है। क्योंकि नरक में तो देवा ये लिया, तिर्यक आयु लिया, मनुष्य आयु लिया, और गति में तो सभी चारों गतियाँ ली है ना, क्योंकि वहाँ जो आयु बंधेगी उसकी बात वहाँ आई। ये 26 हुए जुगुप्सा तक। भय में अनंत गुणा है, शोक में अनंत गुणा है, रति में अनंत गुणा है, पुरुष वेद में अनंत गुणा है, तीसवे स्त्री वेद में अनंत गुणा है, नपुसक वेद में अनंत गुणा है, बत्तीसवे मनःपर्य ज्ञानावरण में अनंत गुणा है, स्त्यान वृद्धि में अनंत गुणा है, दानांतराय में अनंत गुणा है, अवधि ज्ञानावरण अवधि दर्शनावरण और लाभांतराय में अनंत गुणा है, श्रुत ज्ञानावरण अचक्षु दर्शनावरण और भोगांतराय में अनंत गुणा है, चक्षु दर्शनावरण में अनंत गुणा है, आभिनिबोधिक ज्ञानावरण यानी मति ज्ञानावरण और परिभोगांतराय में अनंत गुणा है। और करना और हो गया। अब 40 नंबर, अप्रत्याख्यानावरण मान में अनंत गुणा है, अप्रत्याख्यानावरण क्रोध में विशेष अधिक है, अप्रत्याख्यानावरण माया में विशेष अधिक है, अप्रत्याख्यानावरण लोभ में विशेष अधिक है, प्रत्याख्यानावरण मान में अनंत गुना है। 44 प्रत्याख्यानावरण क्रोध में विशेष अधिक है, संज्वलन मान में अनंत गुना है, प्रत्याख्यानावरण मान और क्रोध ही लिए। माया और लोभ रहूंगे लल्ले से। देखो प्राकृत में नीचे से पांचवी लाइन, पच्चक खान माने अनंत गुणों, कोहे विशेषायो, माया विशेषायो, लोभे विशेषायो। अभी जो हमने पढ़ा ना, अभी हमने कहां तक नंबर दिए मान और क्रोध पढ़ा, तो अभी 46 नंबर पर माया और 47 पर लोभ चाहिए। हाँ, प्रत्याख्यानावरण मान में 44 नंबर आया, 45 के लिए प्रत्याख्यानावरण क्रोध में विशेष अधिक है। अब 46 नंबर पर यहाँ ऐड करना पड़ेगा, प्रत्याख्यानावरण वहां डिक्टो करना, प्रत्याख्यानावरण माया में विशेष अधिक है, हाँ, और 47 में प्रत्याख्यानावरण लोभ में वो विशेष अधिक है, तो डिक्टो कर सकते हैं। अब संज्वलन का नंबर 48 आएगा, ये माया और लोभ लिखना रह गया वहां पर, क्योंकि प्रत्याख्यानावरण कंटिन्यूस आएंगे ना, मान क्रोध माया और लोभ। हाँ, संज्वलन को 48 आ जाएगा। फिर पहले संज्वलन मान को लेना अनंत गुना, प्रत्याख्यानावरण लोभ से ये अनंत गुना लेना, फिर उसके आपस में अधिक अधिक लेना। 49 पर संज्वलन क्रोध में विशेष अधिक है, 50 में संज्वलन माया में विशेष अधिक है, संज्वलन लोभ में विशेष अधिक है। फिर 52 पर केवल ज्ञानावरण, केवल दर्शनावरण, असाता वेदनीय और वीर्यांतराय में अनंत गुणा है। उच्च गोत्र में अनंत गुणा है, और यश कीर्ति में अनंत गुणा है, साता वेदनीय में अनंत गुणा है, 56 मिथ्यात्व में अनंत गुणा है, आहार शरीर में अनंत गुणा है, 57 इस प्रकार नरक गति में जगन्य अनुभाग संक्रम दंडक समाप्त हुआ। यहाँ भी हमने देखा था ना, बीच में हमने अवधि ज्ञानावरण, अवधि दर्शन और लोभान लाभांतराय में 3 एक साथ लिए थे, यानी 2 प्लस वहां हुए, ये शुद्ध ज्ञानावरण के साथ भी 3 प्रकृतियां ली, वहां भी 2 प्लस हो जाएंगे। अभी निबोधिक ज्ञानावरण के साथ 1 एक्स्ट्रा ली थी, ये 5 हो गए। और फिर और भी केवल ज्ञानावरण के साथ लिए थे ना, केवल ज्ञानावरण, केवल दर्शन, असात और वीर्यांतराय, वहां तो 1, 2, 3 एक्स्ट्रा हो गए, 8 एक्स्ट्रा हो गई, और वहां तो 65 होता है टोटल। यहां भी टोटल 65 हो गई थी। अब तिर्यंच गति में बताएंगे। अनंतानुबंधी का उदय है तो चारों का एक साथ है। हाँ, नहीं, अनंतानुबंधी के साथ जब संज्वलन का उदय हो रहा है वो सर्वघाती है, प्रकृति देश घाती है। और उसका अनुभव देखो, अनंतानुबंधी का अनुभव कहाँ पर था और संज्वलन का अनुभव कहाँ पर है, कितना अनंत गुना है। जघन्य की अपेक्षा ना उसके जघन्य से इसका जघन्य जो है वो अनंत गुना है, ऐसा लेना है। यह जघन्य की बात चल रही ना, सर्वघाती रूप से, क्योंकि उसका अकेला सर्व अकेला संज्वलन होगा तो ही देशघाती कहलाएगा। जब प्रत्याख्यान आवरण के साथ है तो उसके अनुसार उसका भी अनुभव ज्यादा है ना, जब वहां तो वो तो पॉसिबल नहीं है, अधिक से अधिक चौथा गुणस्थान है तो अनंतानुमति मिट गया है और अभी अन्य का चल रहा है। हाँ, तिर्यंच गति में सम्यक्त्व प्रकृति सबसे मंद अनुभाग वाली है। अब ये उदय रूप लेना ही नहीं, यहाँ पर सत्ता में पड़े पड़े भी कितना मंद हो सकता है उसका, उसकी बात है। अब कोई वहां समय दृष्टि अनंतानुबंधी का विसंयोजन कर रहा है तो उसकी विशुद्धि ज्यादा है, तो अन्य भी सबका उसकी ने अनुभाग घटाया समझते हम, फिर भी अनंतानुबंधी के मंद से संज्वलन का मंद अनंत गुना है। अभी आहारक की बात है, वहां तो कोई उदय का सवाल नहीं है, तो अंदर पड़े पड़े वो जघन्य कितना है तो उसको तो लास्ट में रखा। तिर्यंच गति में सम्यक तो प्रकृति सबसे मंद अनुभाग वाली है, जैसे हमने नर गति में भी देखा था, उससे सम्यक मिथ्यात्व में वह अनंत गुणा है। और उसका मात्रा ऊपर चली गई मे वाली, अनंत अनुबंधी मान में अनंत गुणा है, अनंत अनुबंधी क्रोध में विशेष अधिक है, चार नंबर, अनंत अनुबंधी माया में विशेष अधिक है, अनंत अनुबंधी लोभ में विशेष अधिक है। फिर वैक्रियक शरीर में अनंत गुणा है। अभी नर गति की अपेक्षा अलग अलग होगी, उस गति में किसका अनुभाग कितना है, ये जघन्य की बात चल रही है ना, जघन्य अनुभाग में अल्पबहुत्व बता रहे हैं। तिर्यक आयु में अनंत गुणा है, मनुष्यायु में अनंत गुणा है, दसवें पॉइंट पर नरक गति में अनंत गुणा है, मनुष्य गति में अनंत गुणा है, देव गति में अनंत गुणा है, नारकियों में देखा तो पहले नरक, फिर तिर्यंच, फिर मनुष्य, फिर देव गति ली थी। अब यहाँ नरक गति, मनुष्य गति, देव गति, तिर्यंच गति को लिया ना, आगे आगे रखेंगे, कहीं आगे रखेंगे। तो ये 12 हो गए इस पृष्ठ पर, 396 पृष्ठ पर आते हैं। उच्च गोत्र में अनंत गुणा है, नारकायु में अनंत गुणा है, देवायु में अनंत गुणा है, औदारिक शरीर में अनंत गुणा है, 16 हुए, तेजस शरीर में अनंत गुणा है, कारमान शरीर में अनंत गुणा है, हास्य में अनंत गुणा है, रति में अनंत गुणा है। जो ओग में बताए ना वो और तो वही रहेगी, तो गति के अनुसार उसमें जो कोई वेरिएशन है उसको बता रहे। अब 21 नंबर पर तिर्यंच गति में अनंत गुणा है, नीच गोत्र में अनंत गुणा है, अयश कीर्ति में अनंत गुणा है, प्रचला में अनंत गुणा है, निद्रा में अनंत गुणा है, 26 में प्रचला प्रचला में अनंत गुणा है, फिर निद्रा निद्रा में अनंत गुणा है, जुगुप्सा में अनंत गुणा है, भय में अनंत गुणा है, शोक में अनंत गुणा है, 30 हुए यहाँ तक, अरति में अनंत गुणा है, पुरुष वेद में अनंत गुणा है, त्रिवेद में अनंत गुना है, नपुसक वेद में अनंत गुना है, मनपरे ज्ञानावरण में अनंत गुना है। 35 नंबर स्त्यान वृद्धि में अनंत गुना है, दानांतराय में अनंत गुना है, अवधि ज्ञानावरण, अवधि दर्शनावरण और लाभांतराय में अनंत गुना है। 38 हो गए। श्रुत ज्ञानावरण और भोगांतराय में अनंत गुना है, चक्षु दर्शनावरण में अनंत गुना है, मति ज्ञानावरण और परिभोगांतराय में अनंत गुना है, अप्रत्याख्यानावरण मान में अनंत गुना है, अप्रत्याख्यानावरण क्रोध में विशेष अधिक है, अप्रत्याख्यानावरण माया में विशेष अधिक है और अप्रत्याख्यानावरण लोभ में विशेष अधिक है। फिर प्रत्याख्यानावरण मान में अनंत गुना है, प्रत्याख्यानावरण क्रोध में विशेष अधिक है, प्रत्याख्यानावरण माया में विशेष अधिक है। ये 48 हो गए। प्रत्याख्यानावरण लोभ में विशेष अधिक है। फिर संज्वलन मान में अनंत गुना है, संज्वलन क्रोध में विशेष अधिक है, संज्वलन माया में विशेष अधिक है, संज्वलन लोभ में विशेष अधिक है। फिर केवल ज्ञानावरण, केवल दर्शनावरण, असाता वेदनीय और वीर्यांतराय में अनंत गुना है। 54 नंबर हो गए। यश कीर्ति में अनंत गुना है, साता वेदनीय में अनंत गुना है, मिथ्यात्व में अनंत गुना है। इस प्रकार तिर्यंच गति में जघन्य अनुभाग संक्रम दंडक समाप्त हुआ। आहार को नहीं लिया। तिर्यंच गति में जघन्य कहाँ होता है, ऐसी बात है ना। हाँ, उस गति का जघन्य लेना है ना, उस गति में मिनिमम पॉसिबल कितना है उसकी बात चल रही है। इस यहाँ नहीं लिया आहार, ये बात बता रही हूँ। हमने तो कहीं छोड़ा नहीं बीच में। आहारक पढ़ेंगे आगे। जिस प्रकार से तिर्यंच गति में सब पदों की प्ररूपना की गई है, उसी प्रकार से तिर्यंच योनिमतियों में भी उक्त सब पदों की प्ररूपना करना चाहिए। मनुष्यों में ओघ निरूपित जघन्य अनुभाग संक्रम दंडक की अपेक्षा नरक गति नाम कर्म तक कोई विशेषता नहीं है। ओघ में देखो, क्योंकि वो जघन्य जो है ना, संज्वलन का जघन्य वगैरह वगैरह जो हमने देखा था, लोभ से शुरू किया था पहले में पहले, तो नरक गति ने 31 नंबर था। तत्पश्चात नरक गति नाम कर्म की अपेक्षा देवगति नाम कर्म में अनंत गुना है। वो ओघ में हमने मनुष्य गति को बीच में लिया था। उससे नारकायु में अनंत गुना है, देवायु में अनंत गुना है और मनुष्य गति नाम कर्म में अनंत गुना है। ये थोड़ा आगे पीछे है उसमें, ओग की अपेक्षा। उच्च गोत्र में अनंत गुना है, औदारिक शरीर में अनंत गुना है। यहाँ शेष पदों की प्ररूपना जैसे, वो बराबर करना जैसे, जैसे ओघ जघन्य दंडक में की गई है वैसे करना चाहिए। इस प्रकार मनुष्यों में जघन्य अनुभाग संक्रम दंडक समाप्त हुआ। उक्त प्ररूपणा जिस प्रकार मनुष्यों में की गई है उसी प्रकार मनुष्यनियों में भी करना चाहिए। उक्त दंडक की प्ररूपणा जिस प्रकार नारकियों में की गई है उसी प्रकार देवों में और देवियों में भी करना चाहिए। द्विंद्रिय तीन्द्रिय और चतुरिंद्रिय जीवों में तिर्यंच गति के समान प्ररूपणा करना चाहिए। शंका, विकलेंद्रिय जीवों की वह प्ररूपणा तिर्यंच गति के समान किस कारण से बतलाई है करो उसको। समाधान, इसका कारण यह है कि देवगति मनुष्य गति नरक गति वैक्रियक शरीर चतुष्क और उच्च गोत्र का संयुक्त होने के प्रथम समयवर्ती जघन्य अनुभाग सत्कर्म विकलेंद्रिय जीव में पाया जाता है। संयुक्त होने के प्रथम समयवर्ती जघन्य अनुभाग सत्कर्म संयोजन होने की बात है विकलेंद्रिय जीवों में पाया जाता है तथा यानी पहले उसकी उद्वेलना की थी बाद में बांधी और फिर उसमें उत्पन्न हुआ ऐसा हो सकता है ना। तथा सासाधन सम्यक दृष्टि में पूर्व विसंयोजित अनंतानुबंधी का संयुक्त होने के द्वितीय समयवर्ती वह जघन्य अनुभाग सत्कर्म विकलेंद्रिय जीवों में पाया जाता है। इस कारण विकलेंद्रियों की जो वह प्ररूपणा तिर्यंच गति के समान कही है यह ठीक ही कहा गया है। यह हमने देखा था ना उसका जघन्य अनुभाग संक्रमण किसके होता है, संयुक्त होने के यानी संयोजन होने के। पहले विसंयोजन हुआ था सत्ता में नाश हुई थी, फिर संयोजन यानी बंद हुआ जघन्य परिणाम से, जघन्य अनुभाग बांधा, फिर आवली बीत गई और फिर उसका समय आया पहला, तभी की बात है। क्या क्या अनंतानुबंधी, अनंतानुबंधी सासाधन में आया, वहां वहां तो उदय है उसका बंद भी है। पूर्व विसंयोजित अनंतानुबंधी का संयुक्त होने के द्वितीय समयवर्ती वह जघन्य अनुभाग सत्कर्म यानी वहां ऐसा लेना अनंतानुबंधी का विसंयोजन किया मिथ्यात्व में गया फिर दोबारा उसने सम्यक तो प्राप्त किया सासाधन में आया, क्योंकि डायरेक्ट तो सासाधन में नहीं आएगा ना। हाँ, हाँ जा सकता है। एक अपेक्षा ऐसी ना, एक कथन ऐसा आता है कि सासाधन में मरकर एक इंद्रिय से असंगी संगी सभी पर्याप्तों में जा सकता है, जन्मता है, अपर्याप्तों में नहीं जन्म देता। और कोई कहते वो नहीं जाता है, संगी में ही जन्मता है, ऐसे दो मत है। उसकी अपेक्षा यहाँ विकलेंद्रियों को लिया है। अब आगे 398 यहाँ भुजाकार संक्रम में अर्थपद की प्ररूपणा की जाती है। भुजाकार संक्रम में पहले अल्प था फिर बाद में ज्यादा होने लगा, अनुभाग की बात है। यथा अनुभाग के जो स्पर्धक इस समय संक्रमण को प्राप्त कराए जाते हैं वे यदि अनंतर बीते हुए समय में संक्रामित अनुभाग स्पर्धकों की अपेक्षा बहुत है तो यह भुजाकार संक्रम कहलाता है। क्या कहते हैं, कितने स्पर्धकों में से ये संक्रमण चल रहा है, तो पहले मान लेते 100 स्पर्धकों में से बीते समय में 100 में से संक्रमण होता था, अब वर्तमान में 101 हो या 105 हो या 110 हो, इतने में से संक्रमण होने लगा तो उसको कहेंगे भुजाकार संक्रमण। परंतु यदि इस समय में संक्रमण को प्राप्त कराए जाने वाले वे ही अनुभाग स्पर्धक अनंतर बीते हुए समय में संक्रामित स्पर्धकों की अपेक्षा स्तोक है तो यह अल्पतर संक्रम कहा जाता है। पूर्व समय में 100 थे, अभी 95 हो गए, तो हम कहेंगे अल्पतर अनुभाग संक्रमण हो रहा है। यदि दोनों ही समयों में उतना उतना मात्र ही अनुभाग स्पर्धकों का संक्रम होता है तो यह अवस्थित संक्रम कहलाता है। और एक यह वाक्य जोड़ दिया है, पूर्व में असंक्रामक होकर संक्रम करना, इसे अवक्तव्य संक्रम कहा जाता है। ये ब्रैकेट पूरा करना चाहिए यहाँ पर, एक्चुअली आगे किया है मगर वो अस्पष्ट दिख रहा है। इस अर्थ पद के अनुसार स्वामित्व का कथन करते हैं, यानी पहले ये नियम बताए, भुजाकार किसको कहना, अल्पतर किसको कहना, अवस्थित किसको कहना और अवक्तव्य किसको कहना, अभी उस संबंधी अभी स्वामित्व बताएंगे। मति ज्ञानावरण का भुजाकार संक्रम किसके होता है, ये स्वामित्व बता रहे ना, कौन से जीव को होता है, किस पोजीशन में होता है, कि जो जीव सत्कर्म से कम अथवा उसके बराबर ही अनुभाग को बांधता हुआ स्थित है वह उससे अधिक अनुभाग को बांधकर बंधावली को बिताकर जब उसको संक्रांत कर रहा हो तब उसके मति ज्ञानावरण का भुजाकार संक्रम होता है। क्या कहते हैं, पहले उसने जितनी सत्ता में है उससे कम बांधा या उतना ही बांधा, और फिर बाद में क्या किया, अधिक बांधा, तो अधिक बांधा और बंधावली के बाद क्या हो जाएगा, वो कम बांधा था उसका उत्कर्षण हो जाएगा, तो उसको भुजाकार कहेंगे। या जो अभी अधिक बांधे हैं ना, पहले स्पर्धक कम थे, मान लेते पहले 100 थे, अभी नया बंध हो गया तो अभी स्पर्धक कितने हो गए, 105 हो गए, तो 105 में से संक्रमण होगा, उसका अपकर्षण को भी संक्रमण ही कहेंगे। तो आवली काल तक तो नहीं होगा, आवली काल तक तो पुराने जो 100 है उसमें से अपकर्षण वगैरह होगा, परंतु अभी बंधने के बाद आवली के बाद 105 हो गई टोटल, तो उसमें से जो कुछ यथा योग्य अपकर्षण होगा। अनुभाग भी हर समय में मिनिमम से मैक्सिमम कितना बांधता है उसकी भी लिमिट होगी, नहीं हर बार मिनिमम से नहीं शुरू करेगा, स्थिति में जो हम एक समय से लेकर सभी स्थितियां बंधी जाती है, वैसे क्या अनुभाग में जघन्य से लेकर उत्कृष्ट तक सभी बनता है। सभी प्रकार के परमाणु हो गए मिनिमम से मैक्सिमम, हाँ स्पर्धकों की बात है, उतने स्पर्धक हो गए तो स्पर्धक ज्यादा तभी कहलाएंगे ना कि जगन्य से। आपका प्रश्न ख्याल में आया, जब स्थिति बनती है कोई किसी भी कर्म की पर उसमें भी आबाधा वेरिएशन है ना, हाँ पहले समय से लेकर उतनी स्थिति कहना, उनने ऐसा पूछा है, जब स्थिति बंदी है 70 कोड़ा कोड़ी की, तो पहला निषेक दूसरा निषेक एक एक समय करके 70 कोड़ा कोड़ी तक सभी निषेक बनते हैं, यानी जो समय पर अबद्ध बांधा है वो सभी में डिस्ट्रीब्यूट होता है। वैसे अनुभाग में भी क्या जघन्य जो हमने मिनिमम पॉसिबल अनुभाग है वहां से लेकर ऊपर तक सभी अनुभाग वाले स्पर्धक बनते हैं, क्या अकेले ऊपर ऊपर के बंधेंगे या जघन्य बंधेंगे, यानी कुछ परमाणु मिनिमम अनुभाग वाले भी होंगे कि नहीं उसमें, ऐसा उनका कहना है, ऐसा पूछना है। हाँ, यानी वो तो जीरो, जैसे हमने निषेक पहले से अंत तक देखे वैसे उसमें क्या लेना है? पहले से लगता नहीं पहले से लेना है। क्योंकि वहां भी जैसे आबादा होती है ना, जैसे बड़ी स्थिति वाले को बड़ी आबादा, वैसे अनुभाग में उत्कृष्ट अनुभाग बांधने वाले के उसके स्टार्टिंग पॉइंट भी कुछ ऊपर का होगा ऐसा लगता है। क्योंकि कषाय के अनुसार उसके अनुभाग बंद होता है। हाँ, देखो अभी हम अपने आते समय हो चुका अभी, वैसे 398। एकदम जघन्य अनुभाग आबादा के सवाल नहीं है, क्योंकि उदय में आने की बात नहीं, उदय में आने की बात नहीं है। हाँ, परंतु वहां भी जघन्य में ही अनुभाग क्या वहां बंधेगा? तो इतना जघन्य बंधेगा तो उसका संक्रमण भी कहलाएगा। हाँ, जितना है अभी, जितने भी निषेक है, जितने स्पर्धक है, उतने वहां भी बंधेंगे। 100 है तो 100 तक के बंधेंगे। अभी अल्पतर संक्रमण की बात आती है यहाँ पर। अल्पतर संक्रम अनुभाग कांडक घात के बिना नहीं होता, ये समझ में है? पहले अनुभाग संक्रमण होता था, मान लेते सत्ता में 1000 स्पर्धक है, होते अनंत है वो, तो सत्ता में 1000 अनुस्पर्धक थे, एक अंतर मुहूर्त में एक बड़ा कांडक हुआ तो 1000 में से एक साथ 100 घट गए। तो पहले 1000 स्पर्धकों में से अपकर्षण होता था, अभी 1000 स्पर्धक टोटल थे तो उसमें वो अतिस्थापना निक्षेप वो झंझट छोड़ देना, हम मान लेते 1000 में से होता था, अब 900 से होगा, एकदम कांड घात पूरा हो गया ना, अभी 900 ही बचे वहां स्पर्धक, तो 900 में से होने लगा। तो यहाँ इसलिए कहते अल्पतर संक्रम जो होगा वो अनुभाग कांडक घात के बिना नहीं होता। ऑर्डिनरी अपकर्षण में से क्यों नहीं होगा? क्योंकि 1000 में से होता था, अपकर्षण भले 1000 में से हुआ, कुछ परमाणुओं का अनुभाग घटा, परंतु सत्ता में 1000 के 1000 वो पड़े है ना, निषेक में तो हम समझते घटते चले जाते, परंतु यहाँ तो अनुभाग वाले सारे पड़े हैं, तो जब तक कांड घात नहीं होता तो उतने उतने में ही चलता रहेगा, क्योंकि उतना है ना, उतने स्पर्धक पड़े हैं अंदर पर। अभी हम बाकी बात कल करेंगे। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लो कालो सोवाणी मस्तक नवो सदा देत हो। प्रेरणा में